तो आज सब वक्ता लोग बलदेव जी के संबंध में चरणों में उनके चरणों में पुष्पांजलि प्रदान करेंगे। गर्ग संहिता में लिखा है कि बलदेव प्रभु जी कृष्ण से लगभग एक वर्ष बड़े हैं, किंतु जीव गोस्वामी ने बतलाया कि नहीं, पूर्णिमा के दिन यदि एक वर्ष मान लिया जाता है बलदेव जी बड़े हैं, एक ही साथ में नामकरण हुआ, एक ही समय में घुटनों के बल में चले हैं और सब लीलाएं हुए हैं, यह कैसे संभव होगा? एक वर्ष बड़ा होने से नहीं संभव। इसलिए बलदेव प्रभु जी का जन्म कृष्ण से केवल 8 दिन बड़ा है। इस प्रकार से सभी कुछ सामंजस्य किया जा सके। ब्रजवासी लोग कोई एक वर्ष वाला मानते हैं, किंतु हम लोग इसको मानते हैं। अभी अकिंचन महाराज जी बलदेव प्रभु के साथ संबंध में कुछ संक्षेप में बोले। वो माइक ले लो।
आएंगे और पुलिस को अगर पूर्ण रूप से देंगे और ये देखना
विमल जी कुछ बोलेंगे। बलदेव प्रभु जी के संबंध में बोलो, क्या कहता हमारी
संबंध में बोलो कि
बलदेव प्रभु जी के संबंध में बोलो।
Yeah.
संकर्षण ये श्लोक याद है तो इसके संबंध में बोल तो हो जाए। कुछ बोलना सीखना होगा तब प्रचार कर सकोगे। जब कभी किसी भी विषय पर बोला जाए एकदम साथी साथ में प्रस्तुत होकर के बोलो।
आपके सामने कभी बोला नहीं पहले?
नहीं बोला है तो इसलिए तो बुलाया नहीं, आ नहीं रहा था। अभी एक थप्पड़ देंगे नहीं बोलने से। बलदेव प्रभु जी ने क्या किया? सुत गोस्वामी को मारा? तो बोलो कैसे मारा, क्यों मारा? कौन सुत गोस्वामी? पढ़ा लिखा लड़का
तो काम से तो
तैयार हो जाना, कल फिर कर बुलाएंगे।
हेलो
उनको कहिए इधर में आकर के बैठे, ठाकुर जी के सामने से आप नहीं बैठना चाहिए, उधर इधर हाँ वहीं पर बैठ।
वहीं पर खड़े होकर हंस रहे। जी रूप गोस्वामी पाद भक्ति स्वामी सिंधु में बताते हैं, कुछ लोग कहते हैं ये रसाभास है कि कहाँ तो ये करुण रस चल रहा है और बलदेव प्रभु वहाँ हंस रहे हैं, हास्य रस प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर बलदेव प्रभु जी इस लीला का सामंजस्य करते हुए बता रहे हैं, बलदेव प्रभु वहाँ पर हास्य रस प्रदर्शित कर रहे हैं, हंस रहे हैं, जिनको देखकर ब्रजवासी लोग ये समझ रहे हैं, संतुष्ट हैं कि कृष्ण को कोई भी विपत्ति नहीं आ सकती, क्योंकि बलदेव ही यहाँ पर तट पर खड़े हंस रहे हैं, इसका मतलब निश्चित रूप से वो उन पर कोई विपत्ति नहीं है। इस प्रकार बलदेव प्रभु समस्त ब्रजवासियों को संतावना प्रदान करते हैं, वहाँ पर विद्यमान है। गोवर्धन धारण लीला में भी जहाँ पर गिरिराज के तलटी में समस्त ब्रजवासी लोग विद्यमान हैं और कृष्ण गिरिराज को धारण किए हुए हैं, बाहर में अनेक प्रकार की विपत्तियाँ आ रही हैं, इंद्र मोटी मोटी वर्षा की बूंदों हाथी के सूंड के समान वर्षा से ब्रज को नष्ट भ्रष्ट करना चाह रहा है। उस समय श्री गोपाल चंपू में जी को सभी बात वर्णन कर रहे हैं, बलदेव प्रभु और उनके साथ कुछ सखागण ये मिलकर समस्त ब्रजवासियों के सामने नृत्य कर रहे हैं। क्यों नृत्य कर रहे हैं? बोलते क्योंकि समस्त ब्रजवासी कहीं ये समस्त ब्रजवासी लोग कहीं इस विपत्ति के कारण कहीं भ्रमित ना हो जाएं, कहीं उनके मन में तनिक भी शंका ना हो कि इस समय हम तो विपत्ति है। इसे बलदेव प्रभु वहाँ पर विचित्र समय पर वर्णन कर रहे हैं, बलदेव प्रभु सखाओं के साथ कृष्ण के सामने नृत्य कर रहे हैं, जिससे समस्त ब्रजवासियों को संतावना प्रदान हो और कृष्ण जो कि अपने बाएं हाथ में गिरिराज को धारण करके खड़े हैं, वह भी बलदेव प्रभु के इस नृत्य को देखकर परम आनंदित होकर उनको भी किसी प्रकार का कोई भी भार में वहन न करें, इसलिए उनको भी संतुष्ट कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत जी में ब्रज लीला में बलदेव प्रभु ने दो असुरों का वध किया। सर्वप्रथम धेनु का असुर, बड़ा सुंदर वर्णन आता है, कृष्ण और बलदेव दोनों ही जब पोगड़ अवस्था में पहुंचे, ब्रज में गोचरण करते करते वन में गोचरण करते करते जब उन्होंने देखा, कृष्ण ने देखा कि कैसे वृक्ष अपने फूल और फलों के द्वारा उनको प्रणाम कर रहे हैं, कृष्ण ये सोचने लगे कि ये सही, कृष्ण ये विचार करने लगे कि इस समय हमको कि बलदेव प्रभु की गुणगान गाने चाहिए। कृष्ण कहने लगे देखो भैया ये वृक्ष कैसे आपको प्रणाम कर रहे हैं, ये फूल और फल प्रदान करके आपको उपहार भेंट कर रहे हैं।
माइक थोड़ा सा दूर है। हाँ
कुछ सखा लोग कृष्ण के चरण द्वार लगे और कुछ
आपकी बड़ी बड़ी गाड़ी है या वहाँ मौजूद आपकी बड़ी बड़ी पूजाएं हैं और उसमें बहुत बल है, लेकिन हमने कभी भी आपके बल का कभी दर्शन नहीं किया। इसके पास ही तालाब है जहाँ पर मेरे पास जो नाम एक पशु वास करता है, उस वन में बहुत सुंदर सुंदर ताल के फल हैं जिसको पाने के लिए हम लोग सदैव मोहित रहते हैं, परंतु वहां पर एक असुर है जो कि गधे के रूप में वास करता है, मैं उन ताल फलों को प्रतिष्ठित करता हुआ रक्षा करता हुआ उनको नष्ट करता हुआ विराजमान है, इसे हम लोग उस फल को पार नहीं कर सकते, पार नहीं कर सकते। बंदे प्रभु ताल फल की ओर गए और जाकर पुरुषों को जोर से हिलाया जिससे कि ताल के फल है नीचे भूमि पर गिर पड़े। कि मेरे मन में कोई विचार ही आ रहा है, इसे देखकर सुपावर आपके बंदे बोला रहा हूँ, गधे का स्वभाव होता है कि वे अपने पिछले दो टांगों से ही प्रहार करता है, इसे देखकर सुने अपने पिछले दो टांगों से बंदे को प्रहार किया, परंतु बंदे प्रभु ने उनके दोनों पैरों को पकड़कर जो ऊपर फेंका घुमाते हुए ऊपर फेंका कुछ किया, जिनका सुर तो वही
रामकृष्ण
हम लोग बोले।
इस प्रकार से प्रलंबा सूत्र का व्रत करके श्री बलदेव प्रभु जी ने जब बलदेव प्रभु प्रलंबा सूत्र का व्रत किया, श्री भक्ति ठाकुर बताते हैं कि इस असुर प्रलंबा असुर व्रत का अर्थ क्या है। भक्ति ठाकुर बताते हैं ये स्थिर अपत्य और प्रतिष्ठा आदि की लालसा, जिस स्त्री अपत्य के संबंध में नव इंद्रों के प्रभु प्रभु भी हुए हैं। उन्होंने कहा बोलते हैं, हम लोग ये चेष्टा करते हैं कि किस प्रकार से हम स्त्री संघ के माध्यम से प्रकृति संघ के माध्यम से हम लोग सुखी हों, परंतु ये वास्तव में सुख नहीं, ये हमको दुख प्रदान करने वाली वस्तु है। इसलिए नित्य आत्मन वृत्ते दुर्लभ आत्मन मृत्यु न, अर्थ के लिए संपत्ति के लिए हम लोग बहुत चेष्टा करते हैं, परंतु ये अर्थ वास्तव में मृत्यु स्वरूप है। इसलिए हम जितनी भी चेष्टा करें सुखी होने की, हम सुखी नहीं, उपजन पार कर सकते, ये उल्टा दुखी प्रदान करने वाला है। इसलिए ऐसी स्थिति में जीवों का त्याग कर सकते हैं, तब कहते हैं तब सब गुरु प्रबंध जिज्ञासु चयन शब्द पर सबसे उत्तम जो श्रेय है जो कल्याण की वस्तु है वो ये है तस्मत गुरु प्रपंच गुरु पादपद्म के चरणों में अपने आप को समर्पित करना। ऐसे गुरु जो कि व्यर्थ हो और समस्त शास्त्रों में निष्णात, ऐसे गुरु पादपद्म के चरणों में समर्पित होने से किसकी ना बढ़ते किस किस्म की जो लालसा और प्रतिष्ठा प्रलंबा सूत्र जो है प्रतिष्ठा का प्रतीक है। इसे प्रतिष्ठा के संबंध में मन शिक्षा में श्री गुरुनाथ दास जी बताते हैं प्रतिष्ठा से प्रतिष्ठा सर्व संबंधी में भी नहीं है कि प्रतिष्ठा की जो आशा है वह ऐसी आशा है जो सर्व संबंधी की तरह हमारे हृदय में नृत्य करती है। श्री प्रभुपाद जी बताते हैं गलत कामनी प्रतिष्ठा भावनी साढ़ से सही तो गलत कामनी जो कलम और कामनी के पीछे जो भावित होते हैं उनको तो पहचानना सरल है, सरल है, परंतु प्रतिष्ठा की जो लालसा है एक ऐसी लालसा है कि जिसको समझना बहुत ही कठिन है। इसे बोले प्रभु प्रलंबा सूत्र का वर्णन करके सारे के हृदय में जो प्रतिष्ठा की लालसा है इसको समाप्त करते हैं। इस प्रकार से बोले प्रभु की अनेक महिमा है जैसे उसने सत्य रस में वात्सल्य रस में और मधु रस में कृष्ण की सेवा करते हैं। इतना ही कहकर मैं अपनी बात को प्राप्त करता हूँ और गुरु जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ मैं हम पर ऐसे व्यक्ति कृपा करें कि इन अनर्थों से हम ऊपर उठकर उनके चरणों की शुद्ध रूप से सेवा करते हैं।
भरमेश्वर
Thank you. उसका जो वो बल से बल से ही कोई काम करता है, अगर बल नहीं है तो काम नहीं होता। अब ये नाम क्या बलदेव, ये बलदेव है, ये बल को काम करता है। जड़ कार्य करने के लिए हमको जड़ बल चाहिए, परंतु जहाँ दिव्य कार्य का नुकसान होता है इत्यादि का, तो वहाँ पर जड़ बल काम नहीं, शारीरिक बल काम नहीं करता, वहाँ से यही चिंतन। तो बलदेव को हमें चिंतन प्रदान करते हैं, जिसके प्रभाव से भक्ति में भगवत हो सकते हैं। करुशक्ति तीन श्रुतियाँ हैं, संजनी सौम्य नाजी, उसमें जो संजनी वृत्ति है उसके देवता के अधिष्ठान देवता श्री बलदेव गुरु। अब संजनी कहने से सत्ता, अब सत्ता तीन प्रकार की होती है, किल सत्ता, अनुचित सत्ता और जड़ सत्ता। वैकुंठ जो धर्म धाम है वहाँ की जो सत्ता है चित्त सत्ता, मैंने क्या नाम रूप गुण क्रिया ये सब सत्ता के अंदर आती है। तो जड़ चिन्मय जगत वैकुंठ कार्य में बलदेव गुरु जो संतरे की देवता है वहाँ वो कृष्णता के रूप में कृष्ण कृष्ण गो गो गोपियाँ विराज अथवा जितने भी अन्य उपकरण है, और तो और कृष्ण का शरीर भी उनका शरीर वही बदल होता है। वही जब जीव जगत में आते हैं जीव जगत में वही अनुचित सत्ता के रूप में प्रकाशित है। इस जगत में जितनी वस्तु हम देख रहे हैं नाम गुण इत्यादि ये सब वही बलदेव गुरु भी जड़ सत्ता के रूप में हमें हमारे सामने उसका देखा जा रहा है। ये संजनी के देवता आज उनका आविर्भाव देखा जाता है तो महाराज जी से ये सप्तम गर्भ के रूप में आए। क्यों सप्तम जो अवस्था है यह भाव अष्टम अवस्था प्रेम श्रद्धा साधु संग भजन के लिए अनुवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति भाव और प्रेम ये समझ साक्षात जयपुर देव कह रही ये सत्ता के स्वरूप हैं। अर्थात वैकुंठ ये भी जो धाम है ये भी बोलते हैं भी बने हुए हैं, इसलिए भगवान के आने से पहले जहाँ उनका धाम होना आवश्यक है सप्तम गर्भ में क्यों आए भाव। जब तक हमारे हृदय में स्थायी भाव नहीं उत्पन्न होगा तब तक, क्योंकि जो भाव है उसको प्रेम की पूर्वावस्था कहा है। जैसे रूप गोस्वामी पाद ने भक्ति की भी भाव बताई है साधन भक्ति भाव भक्ति प्रेम भक्ति, परंतु विचार करेंगे बाहर को विचार करें तो भक्ति पूरी तरह देखी जाती है। साधन भक्ति साधन भक्ति साधन के जरूर सिद्ध होते साध्य भक्ति तो हम तीन क्यों बता दिए, क्योंकि साध्य भक्ति का स्वरूप बताए साध्य भक्ति अगर प्रेम भक्ति परिपक्व अवस्था अपरिपक्व अवस्था अंतर नहीं है भाव एवं भाव जो अत्यंत विभुत अवसर प्राप्त होता है उसको प्रेम कहते हैं। जब तक हमारे हृदय में स्थायी भाव उत्पन्न नहीं होता है तब वहाँ प्रेम आविर्भाव नहीं होता है, और प्रेम का आगमन नहीं होता भगवान का आविर्भाव भी नहीं होता है। इसलिए सप्तम गर्भ के रूप में आए कभी महाराज जी सुना है। तो इस बार देखा जा रहा है बलदेव गुरु अब इनके दो स्वरूप प्रकाशित, एक गुरु स्वरूप एक भगवत स्वरूप। ये जो दो स्वरूप दिखाई दे रहे हैं दो स्वरूप इनके जो आयुध हैं हर और मुसल ये इनके दो स्वरूप हैं, क्योंकि हर और मुसल हर का कार्यक्रम होता है जोतना और मुसल मुसल कार्य का होता है बीजू को कूट करके और उसके दान को उसके जो चावल इत्यादि बाहर निकाल। पहले हम पहले गुरु तत्व की नजर रखते हैं, अर्थात बलदेव प्रभु गुरु तत्व के रूप में भक्ति के जीव भक्ति के हृदय में भक्ति की खेती करते हैं, और मुसलमान क्या होता है और धान कूटते हैं कूट करके मुसलमान के द्वारा उसका छिलका उतार देते हैं। छिलका उतारने के बाद जो धान निकलता है वो शुद्ध भगवान की सेवा करता है। उसी प्रकार हमारे हृदय में अनेक प्रकार के मैं और मेरा ये एक आवरण आ गया बलदेव प्रभु उस मुसल के माध्यम से गुरु वगैरह वृंदावन धाम में राधा कृष्ण की सेवा में लुप्त हो जाते हैं, फिर उसके बाद महासंघ से जो प्रकट होते हैं वे जीव वैकुंठ में अनंत सिंह बाण इत्यादि जितने अवतार है उनकी सेवा में लुप्त हो जाते हैं। तीसरे जो प्रकाश है वो कारावास है विष्णु, इनसे जीव निकलते हैं, ये होते हैं बद्ध
नंदन। रोहिणी नंदन कुछ बलदेव प्रभु जी के चरणों में पुष्पांजलि प्रदान करें।
संपूर्ण फायदा उठाते हुए जो कुछ करे उनके से सुना है बलदेव कर्म के बारे में कोशिश करूँगा मैं भी उनके की इच्छा को पूर्ण कर सकूँ। मुझे ये डर लगता था कि मुझे कहीं मुझे बोलना है इसलिए मैं पीछे रखा और सब कर्मचारियों को पीछे रखा करें सेवा करवा है और सेव्य भगवान जो सेवा लेते हैं वो स्वयं कृष्ण है। तो एक सेव्य भगवान और एक सेवक भगवान पूर्ण रूप से उनकी सेवा कर रहे हैं। अभी हमारे पूर्व पूर्व भक्तों में और सुबह से जो हम बलदेव का पूरे विषय सुन रहे हैं इसको हम दो तरीके से विश्लेषण कर सकते हैं। बलदेव प्रभु का जो रस है और उनका रस का एक तत्व का विचार और एक रस का विचार में पहले हम तत्व का विचार में समझेंगे। अभी हमारे पूर्वोत्तर ये हो रहा है कि शांत रस में दास रस में सखा रस में वासल रस में और मातृ रस में बलदेव प्रभु कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। एक बात मेरी बात अभी मन में अभी यहीं पे पहले आई थी कि माधुरी रस में कृष्ण की सेवा बलदेव प्रभु कैसे कर रहे हैं। गुरुदेव का एक विचार मुझे जो कुछ साल पहले अच्छा लगा था उसने गुरुदेव ने कहा कि बलदेव प्रभु आनंद मंजी के रूप में उस कुंज में सेवा कर रहे हैं। राधा जी राधा को बिना मन जो हमारे उसमें राधा जी अपनी स्वयं की वो सेवा का जो भाव उनका वाहन भाव प्रयोग कर रहे बाएं तरफ खड़े होना कृष्ण के तरफ वो छोड़ के अन्य मंत्री को वहां पर खड़ा कर देते ये रूप गोस्वामी हमारे रूप मंत्री के उस प्रेमी उस सत्ता को नहीं दे पाते हैं जो अनंत मंत्री को दिया है। इस बात को मुझे जब मैंने गुरुदेव से सुना है तो इतनी ऊंची सेवा राधा जी को दे रहे हैं। फिर भी जब मैंने गुरुदेव से इस बात से पूछा कि फिर हम अनंत दास नहीं हो गए हम दुकान कर रहे हैं अनंत मंत्री इतनी ऊंची सेवा दे देती है जो नहीं मिल रही है फिर भी गुरुदेव ने कहा कि हम दुकान बुलाई है। इस बात का विचार गुरुदेव ने संशोधन करेंगे जो मुझे ऐसा समझ आई कि अनंत मंत्री राधा जी की छोटी बहन है। राधा जी उनके साथ इतना उस केली वो
पिताजी कहाँ है? पिताजी कहाँ है? सुबह वृंदावन लगा रहे हैं, वृंदावन में
अपना ही जब प्रकाश संदर्शन के रूप में करती है तो जितनी भी जीवात्माएं नित्य परिवर्तन के रूप में वैकुंठ में स्थित हैं वो संदर्शन से ही निकल रही हैं। तो जितना भी रस आस्वादन वैकुंठ में जी नित्य परिवर्तन करते हैं वो बलदेव जी के प्रकाश और कृपा से ही हो रहा है, क्योंकि वो सेवक भगवान है, इससे ऊंची सेवा कौन कर सकते हैं। और संदर्शन के आगे जो उनका विस्तार महाविष्णु के रूप में आ गया वो जीवात्माएं उनमें सुषुप्त अवस्था में प्रलय के समय पड़ी है और वो ही जीवात्माएं हम हैं जो भी इस संसार में घूम रहे हैं वो भी बलदेव प्रभु के प्रकाश जो संदर्शन संदर्शन के प्रकाश आगे महाविष्णु और वो महाविष्णु आगे इन जीवात्माओं को इस संसार में भेज रहे हैं। यहाँ पर प्रश्न पूछता है कि भाई बलदेव जी ने जो उनकी कृपा करनी है जो कि नित्य सिद्ध परिकर है और महाविष्णु के रूप में आके उन्होंने हम जीवों पे कोई नहीं कृपा नहीं करी है, हम इस संसार में काम लोभ मोह इसमें पड़के और कितना तड़प रहे हैं तो हमारे ऊपर उस बलदेव की कृपा कैसे होगी। तो यहाँ पे हमें ये समझ आता है राजेंद्र नंदन जी सच्ची सुता हुई मुसरी बालराम होई लोलिका बालराम होई लोलिका। कलयुग में कोई बलराम निखिल प्रभु के रूप में आ गए और निखिल प्रभु के रूप में जिसने राजेंद्र नंदन सच्ची के रूप में आए सच्ची माता के दर्शन हम जीवात्मा को ही कृपा करने के लिए आए। बलदेव जी इतने कृपाणु हैं या नहीं बने नहीं पता, लेकिन चंद्र भागवत चंद्र चरितार्थ से हमें ये पता चला कि बलदेव जी से भी ज्यादा कृपाणु नित्यानंद प्रभु हो गए। बलदेव जी ने फिर भी हल और भूषण पकड़ा है समय से सुन रहे हैं, वो खेती कर रहे हैं अपने हल से इन जीवात्माओं को अपनी तरफ ला रहे हैं और हमारे हृदय के लिए उन्होंने भूषण उन्होंने तो अपने हाथ ऊपर करके ही हम जैसी जीवात्माओं को इस संसार के बल सत्र से पार कराने के लिए उन्होंने ये महामंत्र कहाँ कहाँ पे भेजा है, यहाँ तक की जलाई मलाई को भी नित्यानंद प्रभु नहीं कहा किस पूरा उठा गया। चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कबीरदास महाराज कहते हैं भाई हम तो जलाई मलाई से भी गिरे हुए हैं, जलाई मलाई होते हुई देवापेश
बोलो।
जय के रूप में कारण सही विष्णु ये अपनी विज्ञान शक्ति
अपना हायर स्टडी को क्लियर कर दी, एक अधूरा हासिल करने का भी प्रबंध सभी संचालन के लिए आना और कार्य सर्वेक्षण और इतना सही के माध्यम से प्रगति के गर्भ में जीव की दिशा आहार कर दें और उससे पहले आदेश कि प्रगति के दृष्टि बात करते हुए वहां पर सुनिश्चित कर लें इसके सभी अंदर के और वो इस मंत्र को जब काल के द्वारा पूरी करते हैं उसमें से तीन प्रकार के अहंकार होते हैं वैराग्य तेजस और तमस। वैराग्य अहंकार से देव और मन की उत्पत्ति होती है, तेजस अहंकार से पांच ज्ञान इंद्रियां और पांच कर्म इंद्रियां की उत्पत्ति होती है और तमस अहंकार से पांच स्थूल और पांचवें माता है श्री अग्नि जल वायु आकाश और पृथ्वी और उसकी पांच माताएं अद्भुत रस गंध शब्द स्पर्श श्री नाम नाम संग्रह से ऋषि द्वारा ब्रह्म तत्व को सृष्टि करते हुए जब तक ये सारे सामग्री एकल रूप में पड़ी जब तक जीव
बलदेव की आज बलदेव प्रभु की ठीक नहीं चल रही। आज बलदेव प्रभु जी की का जन्म दिवस है, बलदेव जी सत्ता बल और संधिनी के अधिष्ठात्री देव हैं। कृष्णा संविद या ज्ञान के अधिष्ठात्री देव हैं और राधिका जी आनंद अथवा लादनी शक्ति की अधिष्ठात्री। जब संधिनी संविद और लादनी शक्ति तीनों एक जगह मिलती हैं तब वो कृष्ण के रूप में प्रकटित होते हैं और लीला विस्तार के लिए वही जब अलग से प्रकाशित होते हैं बल अथवा संधिनी के रूप में बलदेव प्रभु जी आते हैं। कृष्ण सभी मिल करके हैं सच्चित आनंद और राधिका जी लादिनी के रूप में राधिका जी प्रकटित होती हैं अपनी प्रत्येक चेष्टाओं से उनको आनंद देती है लाभ देती है इसलिए उनका नाम लाभ। कृष्ण का जहां भी कृष्ण अवतीर्ण होंगे किसी न किसी रूप में बिना बलदेव प्रभु के कृष्ण अवतीर्ण नहीं हो सकते क्योंकि आधार है बलदेव प्रभु धाम स्वरूप है। अतएव जब कृष्ण के रूप में आते हैं तो बलदेव प्रभु के रूप राम के रूप में आते हैं तो लक्ष्मण के रूप गौरचंद्र के रूप में आते हैं तो नित्यानंद प्रभु के रूप में आते हैं। इसी तरह से देखा जाता है जब स्वयं भगवान जब आते हैं तो उनके साथ में किसी न किसी रूप में वो जरूर आते हैं। अभी बतलाया ब्रज में तो केवल उनके हाथों में सिंगा रहता है वहां भी मान होता है मैं रोहिणी नंदन हूं और नंद जी हमारे पिता हैं।
गोप वेश
में रहते हैं किंतु वही जब उनका वैभव प्रकाश मथुरा और द्वारका में चला जाता है तो वो वसुदेव देवकी के पुत्र बन जाते हैं और वहां पर सब लीलाओं को करते हैं। द्वारका में भी उसी प्रकार से द्वारका में वह हल और मुसल लेते हैं मथुरा में वृंदावन में कोई जरूरत नहीं है किंतु वहां पर जीवों के हृदय में भक्ति की खेती करनी है और उस तरह से तो परमेश्वरी जी ने बतलाया जीवों की बहुत तरह की खेती करते हैं जो गोलोक वृंदावन में नित्य मुक्त जीव हैं। वैकुंठ में संकर्षण के रूप में महासंकर्षण के रूप में जीवों को खेती करते हैं उनसे नित्य मुक्त जीव निकल करके नारायण की रामचंद्र जी की नृसिंह इत्यादि की सेवा करते हैं। और वही बलदेव प्रभु जी कर्णाब्धिशाही रूप में आते हैं और वहां से अनंत कोटि तटस्थ जीव उनके हृदय से निकलते हैं उनके ललाट प्रदेश और कर्णाब्धिशाही का ही एक रूप गर्भदशाई है जिनके नाभि से कमल निकला उससे ब्रह्मा जी निकले और ब्रह्मा जी जगत के सृष्टि करते और गर्भदशाई का एक अंश क्षीरोदशाई के रूप में विश्व ब्रह्मांड के प्रत्येक जीवों के अंदर में अंतर्यामी और साक्षात साक्षी के रूप में रहते हैं, उनका पालन पोषण है। खीर माने दूध, दूध माने उनका भरण पोषण करते हैं। गर्भोदशाई माने गर्भ में धारण करते हैं, उससे ब्रह्मा इत्यादि निकल करके सृष्टि। और कारण माने पानी है या नहीं मैं नहीं जानता, किंतु
सृष्टि के कारण है,
सृष्टि का कारण है वो, माया में भी नहीं है, वैकुंठ में भी नहीं। इसलिए जो तटस्थ जो हम लोग जीव हैं उन्हीं से निकले हैं, और बाई चांस कृष्ण को कोई भूल गए हैं, कोई वहीं से चले गए हैं वैकुंठ धाम में, गोलोक वृंदावन धाम में। बलदेव प्रभु जी की बहुत सी लीलाएं हैं, इन लोगों ने वर्णन किया, विशेष करके ब्रज लीला में धेनुकासुर का वध किया। माने क्या, गधा, गधा कहते हैं अज्ञानता को। बलदेव प्रभु जी अज्ञानता को दूर करके उसमें कृष्ण सेवा की वासना इत्यादि को जगा देते हैं, भक्ति जगाते हैं। इसी तरह से मुसल किस लिए, मुसल होता है कोई चीज कूटने के लिए, तो मुसल किस लिए, जीव के हृदय में जितने प्रकार के अनर्थ हैं समस्त अनर्थों को दूर कर देते हैं। बलदेव प्रभु जी के लीला में देखते हैं कि उन्होंने द्विविध बंदर को मारा था, हल से खींचा, मुसल से मारा, उसका मस्तक फट गया। क्या शिक्षा है, भगवान के प्रति भी, भगवान के प्रति श्रद्धा हो भक्ति हो, किंतु बलदेव प्रभु के प्रति न रहे, लक्ष्मण जी के प्रति न रहे, गौचंद्र जी के प्रति रहे, किंतु नित्यानंद प्रभु के प्रति न रहे, तो उसका ये दुर्दैव है, इसी अपराध से वो मरता है। इसलिए देवी को मारा, राम के प्रति भक्ति थी, लक्ष्मण जी का अनादर करता था, और इस लीला में भी, कृष्ण लीला में भी कृष्ण का अनादर नहीं करता था, बलदेव जी का, लक्ष्मण जी का अवतार है, इसलिए उसको मारा। वो गुरु तत्व है, नमिषारण्य में पुराणों का पाठ हो रहा था, लोमहर्षण शोध भागवत पाठ कर रहा, भागवत पुराण पाठ कर रहा। बलदेव प्रभु जी जब गए तो साक्षज्ञा सौनक आदि ऋषि उठ करके उनका अभिवादन किया, सभी उठ करके खड़े हो, और वो लोमहर्षण, मैं पाठक हूँ, वक्ता हूँ, मैं श्रेष्ठ व्यक्ति हूँ, अभिमान है, इसलिए वो उठा नहीं। ओ तुम उठा नहीं, मैं जगत गुरु, तुम जानते नहीं हो जब मैं जगत गुरु हूँ, सभी ऋषि मुनि तुमसे हजार गुना श्रेष्ठ ये उठे, और तुम नहीं उठे, बस हाथ से ऐसे किया गला, ऋषि मुनि हाहाकार कर उठे, अब हमें कौन सुनाएगा पुराण इत्यादि। बलदेव जी ने कहा जी इसको जीवित कर दें, अब तो जीवित नहीं करने की जरूरत है, आप व्यवस्था मात्र कर दें। तब उन्होंने उसी के छोटे बेटे को, शायद उस समय 5-6 वर्ष का होगा, लोमहर्षण की गद्दी पर बैठा दिया, अपना हाथ उसके सिर पर रख दिया, समस्त वेद उपनिषद जो कुछ है सब कुछ तुमको स्फूर्ति प्राप्त हो जाए और साथ ही साथ वो वक्ता हो जाए। पीछे से यही परीक्षित की सभा में सुखदेव गोस्वामी से सुना और सुनकर के भागवत का सर्वश्रेष्ठ वक्ता बने। इसी प्रकार से तब ऋषियों से उन्होंने कहा कि आपने तो पाप किया, इसका प्रक्षालन कीजिए। कैसे? सब तीर्थों में जाइए और वहां स्नान करके और तब पवित्र हो। वो तो जानते थे कि ये कृष्ण भगवान ही है, किंतु लोक शिक्षा के लिए उन्होंने ऐसा किया। भगवान से कृष्ण से ब्रजलीला में मथुरा लीला में कोई विरोध नहीं हुआ, किंतु हम देखते हैं दो जगहों पर उनका विरोध किया बलदेव जी से। सुभद्रा जी के विवाह में वो चाहते थे कि हमारा प्रिय शिष्य दुर्योधन के साथ में अपनी बहन सुभद्रा का विवाह देंगे और उनको छोड़ करके देवकी वसुदेव जी कृष्ण और सब जितनी पत्नियां उनकी रोहिणी और ये सब थी वो सब लोग चाहते थे कि अर्जुन के साथ में इसकी शादी। किंतु बलदेव जी का इतना प्रभाव था, सभी डरते थे वसुदेव देवकी तक, और कृष्ण भी डायरेक्ट रूप में कुछ नहीं करते थे, उनका बड़ा भाई होने के नाते सम्मान करते थे। उस समय में क्या बोल रहा था, सुभद्रा कृष्ण ने अर्जुन के कान में कुछ कहा और अर्जुन बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने हम लोगों का जो त्रिदंड वेश है गेरुआ कपड़ा पहन करके त्रिदंड संन्यास लेकर के बड़ी गंभीर रूप में द्वारका में पहुंचे और समुद्र के किनारे अपनी धुनी रमा दी। सब लोग द्वारका के सभी ये नया संन्यासी बड़ा तेजस्वी है, सब लोग देखने के लिए आने लगे। बलदेव प्रभु जी भी गए, वो भी देखा, उनको भी उनके प्रति श्रद्धा हुआ, नहीं समझ सके ये अर्जुन है। एक दिन सुभद्रा जी भी उनका दर्शन करने के लिए गई और उसी समय में उन्होंने रथ पर चढ़ा लिया द्रौपदी को और घोड़े की बागडोर दे दी सुभद्रा के हाथों में। सुभद्रा जी बड़ी प्रसन्न हो गई जी अर्जुन से ही हमारी शादी हो रही, इसलिए वो लेकर के चलने लगी और अर्जुन धनुष बाण लेकर के तैयार हो गए, कोई आएगा तो उसे हम मार डालेंगे। बलदेव प्रभु जी उसी समय में हल मुसल लेकर के दौड़े, अबे इस दुष्ट को मारूंगा, हमारी बहन का अपहरण कर लिया। कृष्ण कहा जे भैया आप कहते हैं कि अर्जुन ने उसका अपहरण कर लिया, किंतु हम देते हैं देख रहे हैं कि घोड़े की बागडोर लेकर के वही कृष्ण अर्जुन को अपहरण कर रही है, और यदि मारेंगे तो अब तो अर्जुन के साथ में उसकी सगाई एक तरह से हो गई, उसकी इच्छा के विरुद्ध करेंगे। सुभद्रा की इच्छा है कि हमारे पति अर्जुन ही, तो यदि आप मारेंगे तो वो तो विधवा हो जाएगी, इसलिए उचित हो। अरे यदि तुम लोगों की पहले से ही इच्छा है तो हमको बतलाया क्यों नहीं, तो आपके डर के मारे आपसे कहे कौन। इसके बाद में अर्जुन को बुलाया, सुभद्रा को बुलाया, रथ घोड़े धन दास दासी लाखों सामान दे करके और उनको बजा। और एक बार की बात है, कुरुक्षेत्र में अंतिम युद्ध चल रहा था, सब सेना तैनासनम दोनों तरफ की मर गई थी मारकाट में। कृष्ण पांडवों को लेकर के कुरुक्षेत्र में सरोवर के निकट पहुंचे जहां पर वो छिपा हुआ था। भीम ने कहा कि तुम अपने बाप का बेटा नहीं, अपनी मैया का बेटा नहीं, क्या क्या गाली देने ले, तुम छिपा हुआ है डर से निकलो। वो निकल कर के आया, गदा युद्ध होने लगा। गदा युद्ध में कमर के नीचे नहीं मारना चाहिए, किंतु कृष्ण ने ताल ठोक करके जंघे पर कहा जी मारो इसको यहीं पर। बलदेव वो भीम ने वहीं पर जंघे पर मारा, क्योंकि उसका सब शरीर वज्र का था, उसकी मैया क्या थी गंधारी ने कहा थे नंगे होकर के हमारे सामने आओ, तो नंगा होकर के तो आया किंतु हाथ से यहाँ छिपा लिया, इसलिए वो कमजोर था, इसलिए भीम ने मारा वहीं पर। वो तो गिर पड़ा। बलदेव प्रभु जी दौड़े गदा लेकर के, अभी दुष्ट को मारूंगा, इसने अन्याय करके कमर के नीचे मारा। उस समय कृष्ण ने कहा जी भैया जी, भीम को 20 का लड्डू खिलाया गया, आपका अन्याय कहाँ था? उस समय उस अन्याय को मना क्यों? बरनाथ नगर में लक्षागृह में उनको जलाने के लिए पांचों को और कुंती मैया को पूरी चेष्टा की गई, आग लगा दिया गया, वो तो विदुर जी की कृपा से निकल करके चले गए। उस समय आपका अन्याय कहाँ था? और जब द्रौपदी जी का चिरहरण हो रहा था भरी सभा में नंगी करके, ये कहाँ का अन्याय है? उस समय आप कहाँ बैठे थे? और कुरुक्षेत्र के युद्ध में अभिमन्यु को 7 महारथियों ने मिलकर उसका धनुष बाण सब काट कोट करके उसे मार डाला, ये तो पूरा न्याय है। तो न्याय का विचार आपका यहाँ पर तो हो रहा है, वहां पर क्यों नहीं हुआ? उस समय सो रहे थे। तो बलदेव जी ने सोचा जैसे ये कृष्ण से इच्छा से ही हो रहा है, बस उनको मन ही मन में प्रणाम किया और वहां से चले। ये मत विरोध देखा जाता है, ये लौकिक लीला मात्र है। बलदेव जी कृष्ण की इच्छा पूर्ण करने के लिए धाम के रूप में चमर पादुका बैजर छत्र सभी उनके, कृष्ण की बंसी भी सब बलदेव प्रभु की। आज उनकी जन्मतिथि है, आज हम लोग सभी उनके चरणों में पुष्पांजलि अर्पण करते हैं, वो कृपा करके हमें भक्ति का बल प्रदान करें। महामंत्र कौन करेगा?